उसके बाद पेज नंबर 65 पे एक टेबल बना हुआ है बहुत अच्छा, 2.14 डिफरेंशिएटिंग द रीएक्टिवेटेड डिजीज़ फ्रॉम द ट्रू रिलैप्स। ठीक है, तो रीएक्टिवेटेड डिजीज़ के अंदर जो है ना वो हमने ये देखना है कि टाइमिंग क्या होती है इसमें, बाकी वो सारी चीज़ें अभी तक जो हमने डिस्कस की है ना वही समराइज हुई हुई हैं। तो जो रीएक्टिवेटेड डिजीज़ होती है ना, इट स्टार्ट्स विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द ट्रीटमेंट हैज़ बीन डिसकॉन्टिन्यूड। जबकि जब हम रिलैप्स देखते हैं ना, इट टेम्स अ लॉन्गर टाइम, तकरीबन 2 to 5 years, जब तक कि इंक्यूबेशन पीरियड दोबारा जो इन्फेक्शन दोबारा से आ रहा है ना उसका इंक्यूबेशन पीरियड का गैप ज़रूर आएगा, लेकिन जो रीएक्टिवेशन होती है इट टेक्स अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर स्टॉपिंग द कीमोथेरेपी। रीएक्टिवेटेड डिजीज़ में देर इज़ ग्रेजुअल वर्सनिंग। जिस डिज़ीज़ के साथ पहली दफ़ा वो पेशेंट हमारे पास आया था, नेक्स्ट टाइम रीएक्टिवेशन के बाद वो उससे वर्स फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट बीएल का था तो वो जब रीएक्टिवेटेड होके आएगा ना तो एलएल के साथ आएगा, तो वो डाउनग्रेड हुआ हुआ होगा। ठीक है, तो उसमें उसके बाद जो है ना इसकी हिस्ट्री में क्या मिलेगा, देर बी हिस्ट्री ऑफ इनएडिक्वेट कीमोथेरेपी ड्यू टू मिस क्लासिफिकेशन कि वो मल्टी बैसिलरी था लेकिन हमने उसको पॉसी बैसिलरी के फॉर्म में डायग्नोस किया और उसको शॉर्टर पीरियड के लिए हमने ट्रीटमेंट दी थी। यानी यहाँ पे एरर जो है ना ऑन पार्ट ऑफ डॉक्टर आता है, लेकिन जो है ना ज़्यादातर केसेस ये देखे जाते हैं कि वो नॉन कम्प्लाइंस ऑफ द पेशेंट की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द एडवर्स इफेक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और मे बी प्री मेच्योर सीसेशन ऑफ थेरेपी डिफॉल्टर के। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये ऑन पार्ट ऑफ द पेशेंट होता है, तो ज़्यादातर केसेस वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि पेशेंट जो है वो नॉन कम्प्लाइंट होता है टू द ट्रीटमेंट। ड्रग रेजिस्टेंस का रिस्क होता है इन केस ऑफ रीएक्टिवेशन ऑफ द डिजीज़, क्योंकि जब वो पेशेंट ट्रीटमेंट छोड़ देता है या फिर मोनोथेरेपी दे रहा होता है तो उसके अंदर रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस कहीं ज़्यादा हो जाता है। सो दे आर लाइबल टू डेवलप सेकेंडरी ड्रग रेजिस्टेंस स्पेशली इफ ओरिजिनली हैड अ मोनोथेरेपी। पैथोजेनेसिस में यह है कि फेलियर ऑफ द अर्ली कीमोथेरेपी कोर्स टू रिड्यूस द एम लेप्री बिलो द क्रिटिकल थ्रेश होल्ड, तो क्योंकि वो ट्रीटमेंट कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए ली ही नहीं गई, तो इसी वजह से जो है वो बैक्टीरियल काउंट को उतना डिक्रीज ही नहीं कर पाएगा। इस वजह से जब वो पेशेंट ट्रीटमेंट छोड़ देगा तो वही जो बैक्टीरिया विच वर नॉट रिमूव टोटली दे बिकम रीएक्टिवेटेड अगेन, दे मल्टीप्लाई एंड रीच टू अ वेरी इंक्रीज लेवल टू प्रोड्यूस द साइन एंड सिम्टम्स। मैनेजमेंट में हमने अल्टीमेटली तो दोबारा से पेशेंट को वो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट दोबारा स्टार्ट करानी है, लेकिन वो सारे स्टेप्स हमें दोबारा से करने पड़ेंगे। मतलब पहले से पेशेंट को आपने रीएजुकेट करना है और ज़्यादा काउंसलिंग करनी है ताकि वो पेशेंट दोबारा से डिफॉल्टर ना हो जाए या ट्रीटमेंट को छोड़ ना दे। तो हमने सबसे पहले उस पेशेंट की कंडीशन देखनी है, हमने उसके अंदर जो ट्रीटमेंट जो भी हमने देनी है उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशंस को चेक करना है, उसकी सारी इन्वेस्टिगेशंस हमने कराने होंगे स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। उसके बाद रीस्टार्ट फुल कोर्स ऑफ स्टैंडर्ड जो मल्टी ड्रग थेरेपी है और उसको केयरफुली हमने फॉलोअप करना होगा। फिर उसके बाद साथ साथ हमने उसको PCR करके देखना होगा कि ड्रग रेजिस्टेंस वगैरह तो डेवलप नहीं हो रही। उसके अलावा वी हैव टू री एग्जामिन ऑल ऑफ द हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स ऑल्सो इफ़ देर इज़ एविडेंस ऑफ सेकेंडरी ड्रग रेजिस्टेंस इन एनी न्यू केसेज और एनी कॉन्टैक्ट्स हैविंग अ प्राइमरी रेजिस्टेंट इन्फेक्शन, तो फिर उनको भी हमने ट्रीट करना होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि जब हमारे पास एक्सोजीनियस रिलैप्स या फिर री इन्फेक्शन होता है ना, उसमें जो टाइमिंग होती है वो लॉन्गर होती है विच शुड बी इक्वल टू द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो कि दोबारा आके वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। सो ऑनसेट ऑफ द न्यू इन्फेक्शन में ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ न्यू लेशंस होगा आफ्टर एन इंटरवल फॉलोइंग इनिशियल प्रूवन जो कंप्लीटमेंट ऑफ द थेरेपी है उसके बाद। फिर जो लीजन्स होंगे टिपिकली डिफरेंट टाइप के होंगे, मतलब कि इसमें डाउनग्रेड नहीं हुआ हुआ होगा, पूरे पेशेंट अपग्रेड हुआ हुआ होगा। अगर वो LL का पेशेंट था तो अभी हमारे पास BL या BT के साथ आएगा। फिर उसके बाद पेशेंट की हिस्ट्री में हमें जब हम पूछेंगे तो वो पेशेंट जो है ना वो हमें हिस्ट्री देगा कि मैंने पहले इस डिज़ीज़ से हमें डायग्नोज हुआ था, मैंने ट्रीटमेंट भी कम्प्लीट की थी। तो फिर उसके बाद इसमें रेजिस्टेंस जो है ना वो यूजुअली नहीं होती है क्योंकि पेशेंट ने ट्रीटमेंट कम्प्लीटली हुई होती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑर्गेनिज्म इज़ सेंसिटिव टू द कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स। पैथोजेनेसिस में ये होगा कि फर्स्ट कोर्स कीमोथेरेपी इफेक्टिवली हैव बीन कंप्लीटेड टू किल द मेटाबॉलिकली एक्टिव माइकोबैक्टीरियम लेप्री फॉलोड बाय डिलेड रीअवेकनिंग ऑफ परसिस्टर्स। तो ये वही वाले केस है जो हमने कहा था कि परसिस्टर्स होते हैं या फिर एक्सोजीनस जो है वो री इन्फेक्शन होता है वो सारा कुछ। फिर मैनेजमेंट में वही सारा हम पेशेंट को पूरा काउंसिल करेंगे, सारे इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, फुल मल्टी ड्रग थेरेपी दोबारा से स्टार्ट करेंगे, फिर रेजिस्टेंस के लिए चेक करते रहेंगे, फॉलोअप के लिए बुलाएंगे।